नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ जी राजा रमन। राजा रमन, आपका स्वागत है।
थैंक यू शक्ति।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। आईपीएल क्रिकेट में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी। कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराया। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हुआ। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी ने पहले दिन जीत दर्ज की। एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी प्रतियोगिता में लक्ष्य फोगाट फाइनल में पहुंचे, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने कांस्य पदक हासिल किया। और ईस्ट बंगाल ने इंडियन विमेंस फुटबॉल लीग का खिताब जीता। आईपीएल क्रिकेट में अहमदाबाद में गुजरात टाइटंस और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मुकाबला जारी है। ताजा समाचार मिलने तक गुजरात टाइटंस ने 11 ओवर में 3 विकेट खोकर 78 रन बना लिए थे। हैदराबाद ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया। इससे पहले कल दिल्ली कैपिटल्स ने पंजाब किंग्स को 3 विकेट से हराकर प्लेऑफ में पहुंचने की अपनी उम्मीदों को नई जान दी।
कल का दिन उतार चढ़ाव से गुजर रही दिल्ली कैपिटल्स के लिए नई उम्मीद लेकर आया, जबकि दूसरी तरफ पंजाब किंग्स की हार का सिलसिला जारी रहा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले बल्लेबाजी करने उतरी पंजाब किंग्स ने 5 विकेट खोकर 210 रन बनाए, जिसमें सबसे बड़ा योगदान कप्तान श्रेयस अय्यर की 36 गेंद में नाबाद 59 रन और प्रियांश आर्य की 33 गेंद में 56 रन की पारी का रहा। दिल्ली के लिए मिचेल स्टार्क और माधव तिवारी ने 2-2 विकेट लिए। 211 रन के जवाब में दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही। टीम ने 33 के स्कोर तक अपने 3 विकेट खो दिए। इसके बाद टीम के निचले मध्यक्रम ने पारी को संभाला। अक्षर पटेल ने 30 गेंद में 56 रन की कप्तानी पारी खेली, जबकि डेविड मिलर ने 28 गेंद में 51 रन की तेज पारी खेली। अंत में आशुतोष ने 10 गेंदों में 24 और माधव तिवारी ने 8 गेंद में 18 रन की छोटी मगर महत्वपूर्ण पारियां खेली, जिसकी बदौलत दिल्ली ने 19 ओवर में 7 विकेट खोकर विजयी लक्ष्य हासिल कर लिया। माधव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इस जीत के साथ ही डीसी अंक तालिका में एक पायदान ऊपर चढ़कर 7वें स्थान पर आ गई है, जबकि लगातार चौथी हार के बाद पंजाब किंग्स 13 अंकों के साथ चौथे पायदान पर बनी हुई है। जया भारती, स्पोर्ट्स कैन।
तो जिस प्रकार का कल का मुकाबला रहा राजा रमन, कह सकते हैं क्या हम ये सोचें कि पंजाब किंग्स की टीम थोड़ा सा शायद ओवर कॉन्फिडेंस में नजर आ रही है, जो कि लगातार फील्डिंग में आप ढील दे रहे हैं, रन बनाने का मौका दे रहे हैं सामने वाली टीम को।
शक्ति, इस सीजन पता नहीं फील्डिंग को क्या हो गया, कई सारे कैचेस छूट रहे। अक्षर पटेल जैसे बेहतरीन फील्डर भी आसान सा कैच ड्रॉप कर रहे हैं, तो समझ नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है आईपीएल में। लेकिन दिल्ली ने जिस तरीके से जीत हासिल किया है, पंजाब के लिए ये तकलीफ पहुंचा सकती है लॉन्ग रन में। जो टेबल अगर आप देखें तो पंजाब 4th स्थान पर है, खिसक के नीचे आ सकते हैं। वो प्लेऑफ शायद क्वालिफाई नहीं करेंगे, वो खतरा है उनके सामने। अपने गेम को संभालना होगा और फिर जो बाकी 3 मैचेस बचे हैं वो जीतने होंगे पंजाब को। लेकिन कल एक मौका था उनके पास, लेकिन जिस तरीके से फील्डिंग किया है, जिस तरीके से रन अलाउ किए हैं, हालांकि ड्यू फैक्टर काफी बड़ा रहा, लेकिन पंजाब को शायद ये मैच जीतना चाहिए था। उनके हाथ में था ये मैच, और शायद डेविड मिलर की पारी जो बहुत ही बेहतरीन निकली है इन द एंड, आई थिंक दे शुड हैव वन दिस गेम पंजाब।
जी बिल्कुल, डेविड मिलर ने इस बार कोई गलती ना करते हुए कह सकते हैं कि टीम को जिताया, और बल्लेबाजी में वो कॉन्फिडेंस भी नजर आया। और खासकर जो लोअर मिडल ऑर्डर था या फिर जो आखिरी के खिलाड़ी अकीब दर ने वहां पे 2 गेंदों पर 10 रन बनाए और एक बड़ी भूमिका निभाई टीम के लिए।
कप्तान अक्षर पटेल कैच छोड़ने के बाद उन्होंने जो अपना हाफ सेंचुरी बनाया वो भी काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रहा दिल्ली के लिए। लेकिन पंजाब सिर्फ अपने आप को कोस सकती है, ये मैच उनके हाथ था, और मैच से अगर उनके हाथ से अगर निकल गया तो नोबडी इज टू ब्लेम बट पंजाब दैट्स।
जी बिल्कुल, और अगर अभी वर्तमान मैच की बात की जाए जहां हैदराबाद और गुजरात आमने सामने हैं, दोनों टीमें बेहतर खेल रही हैं, एक दूसरे स्थान पर है तीसरे में, और जो भी आज जीतेगा वो टेबल टॉप करेगा। तो चूंकि हैदराबाद अब तक का, गुजरात की बात की जाए, बल्लेबाजी में वो धार नजर नहीं आई जो अब तक देखने को मिली थी,
काफी लो स्कोरिंग मैच लग रहा है अभी तक, हालांकि 11 ओवर ही हुए हैं। 11 ओवर जब तक हुए 80 का भी स्कोर नहीं बना
जी।
आजकल तो आपको पावर प्ले में 60-70 रन आसानी से बन जाते हैं। ये काफी इंटरेस्टिंग मैच है जो अहमदाबाद में हो रहा है, और मुझे लगता है कि हैदराबाद ने टॉस जीत के गेंदबाजी करने का फैसला शायद सही किया है। गुजरात के सामने एक बड़ी चुनौती होगी, जैसा आपने कहा टॉप पोजीशन के लिए लड़ाई हो रही है। ये प्लेऑफ में आप 1 या 2 फिनिश करेंगे तो आपको बेहतर अवसर मिलेंगे, मोर अपॉर्चुनिटीज टू गेट इनटू द फाइनल।
जी बिल्कुल, गुजरात के जहन में ये बात बिल्कुल होगी कि सामने एक ऐसी टीम है जिसके लिए इस आईपीएल का कोई भी टोटल जो है वो छोटा साबित हो सकता है। थाईलैंड बैडमिंटन ओपन आज से शुरू हो गया है। आज खेले गए मुकाबलों में पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने इंडोनेशिया की जोड़ी को 21-19, 21-23 और 21-10 से हराकर प्री क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया, जबकि हरिहरन अमसा करुणन और एम आर अर्जुन की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। वहीं महिला डबल्स में भी जितू पांडा और श्वेत पांडा की जोड़ी को हार का सामना करना पड़ा। भारत को इस प्रतियोगिता में सिंगल्स वर्ग में खिलाड़ियों से अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद होगी, जिनके मुख्य मुकाबले कल से शुरू होंगे।
सातवीं वरीयता प्राप्त लक्ष्य सेन पहले मैच में सिंगापुर के जैसन तेजिया हेंग से खेलेंगे, जबकि आयुष शेट्टी का सामना जापान के छठी वरीयता प्राप्त विश्व चैंपियन पदक विजेता कोडाई नराओका से होगा। महिला सिंगल्स में छठी वरीयता प्राप्त सिंधु पहले दौर में चीनी ताइपे की तुंग सियू तोंग से खेलेंगी। किदंबी श्रीकांत का सामना आठवीं वरीयता प्राप्त लो किन यू से होगा। तरुण मल्लीपल्ली का सामना जापान के कोकी वातानबे से होगा। महिला वर्ग में उन्नति हुडा चौथी वरीयता प्राप्त पोनपावी चोचू वोंग से खेलेंगी, जबकि देविका सिहाग की टक्कर जापान की नत्सुकी निदायरा से और तन्वी शर्मा का सामना हिना अकेची से होगा। मालविका बंसोड पहले दौर में कनाडा की वेन यू झांग से खेलेंगी, जबकि अनमोल खरब का सामना दूसरी वरीयता प्राप्त और पूर्व ओलंपिक चैंपियन चेन युफेई से होगा। मुकेश कुमार, स्पोर्ट्स कैन।
तो कह सकते हैं कि सिंगल्स में भारत की दो पीढ़ियां एक साथ आपको चुनौती देते हुए नजर आएंगी। एक तरफ पीवी सिंधु जैसी एक्सपीरियंस खिलाड़ी हैं, लक्ष्य सेन है, दूसरी तरफ तन्वी शर्मा, मालविका बंसोड, अनमोल खरब। तो एक नई पीढ़ी यहां पे आगे बढ़ रही है और कह सकते हैं कि असली उम्मीदें वहीं से होंगी।
बिल्कुल है और होनी भी चाहिए, लेकिन इनको अभी तक इतना अनुभव हो गया है, ये बड़े टूर्नामेंट्स में पहले दौर में या दूसरे राउंड में बाहर नहीं होना चाहिए, इनको क्वार्टर फाइनल सेमीफाइनल तक का अनुभव लेना चाहिए। संघर्ष करना पड़ेगा, इट इज नॉट इजी एट द इंटरनेशनल लेवल, क्योंकि बाकी खिलाड़ी खास करके चाइनीज ताइपे से हो या कोरिया से हो या इंडोनेशिया से हो या चाइना से हो ये और जापान से हो, दे आर कमिंग टू कम्पीट, लेकिन हमारे जो युवा पीढ़ी है इनको चाहिए कि अपना गेम का एक स्तर उठाएं और फिर सिंधु जैसे बने या साइना नेहवाल जैसे बने या उनसे बेहतर बने। वो भूख शायद नजर नहीं आता है, दिखाना पड़ेगा। ये हम शायद गलत सोच रहे हैं कि उनमें भूख नहीं है, बिल्कुल है भूख, लेकिन बहुत ज्यादा इसको दिखाने की जरूरत है, उसको अपने जो क्षमता है उसके अनुसार खेलना पड़ेगा।
जी बिल्कुल, अपनी क्षमता के अनुसार खेलना होगा और उम्मीद होगी कि थॉमस कप में मिले हुए ब्रॉन्ज मेडल की चमक को और तेज करने के इरादे से लक्ष्य सेन और आयुष शेट्टी भी कल कोर्ट पर उतरेंगे। उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई अंडर 17 मुक्केबाजी चैंपियनशिप में लक्ष्य फोगाट ने फाइनल में प्रवेश कर लिया है, जबकि 4 अन्य मुक्केबाजों ने सेमीफाइनल में कांस्य पदक हासिल किया। लक्ष्य ने 75 किलोग्राम भार वर्ग में कोरिया के सोइंगविंग ली को सर्वसम्मत 5-0 के फैसले से हराया, जबकि नरेंद्र नेला को 46 किलोग्राम वर्ग, यश यादव को 50, निवेश पाल को 54 और नमन को 70 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक हासिल हुआ। तो लगातार इस प्रतियोगिता से भारत के लिए अच्छी खबरें आ रही हैं और आज का दिन कह सकते हैं इतना ज्यादा ऊंचे बेंचमार्क सेट हो गए हैं इस प्रोग्राम में कि कल 8 खिलाड़ी फाइनल में पहुंचे, तो थोड़ा सा डाउन रहा एशियन अंडर 17 में बॉयज का प्रदर्शन आज।
हायर वेट कैटेगरी से, और हमेशा ये होता है शक्ति कि भारत के हेवियर वेट कैटेगरीज के बॉक्सर्स चाहे वो जूनियर्स हो या सीनियर्स हो वो थोड़ा सा स्ट्रगल कर जाते हैं इंटरनेशनल लेवल पर, लेकिन अच्छी प्रदर्शन है अभी तक। आपको कम से कम 10 मेडल शायद नजर आ रहे हैं
जी,
5 तो गोल्ड मेडल होंगे और 4 या 5 आपके ब्रॉन्ज मेडल्स भी कन्फर्म्ड है, गोल्ड या सिल्वर हो सकते हैं, 5 गोल्ड या सिल्वर हो सकते हैं। लेकिन बॉक्सिंग का हाल जो है, जो हो रहा है इधर साई और बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बीच में जो विवाद चल रहा है, ये खेल के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन अच्छी बात इन लड़कों से या लड़कियों से जो ताशकंद में खेल रहे हैं वो अपना फोकस वहां पर लगा के खेल रहे हैं, अपने घर में जो हो रहा है उस पे ध्यान ना देके अपना बेस्ट गेम देने का प्रयास कर रहे हैं, एंड आई थिंक दैट इज क्रेडिटेबल।
जी बिल्कुल, ये प्रशंसनीय होगा कि वो BFI की तमाम बैटल्स को छोड़ करके जो बैटल वो इस समय रिंग में लड़ रहे हैं उस पे पूरा ध्यान देते हुए और उस पे एक बेहतरीन प्रदर्शन की ओर आगे बढ़ते हुए। बंगाल ने इंडियन विमेंस फुटबॉल लीग का खिताब जीत लिया है। सेतु FC और सेसा FA के बीच आज मुकाबला 1-1 से ड्रॉ होने के बाद ईस्ट बंगाल ने सफलतापूर्वक अपने खिताब का बचाव किया। नीता FA के खिलाफ अपना मैच शुरू होने से पहले मोशाल गर्ल्स के 11 मैचों में 30 अंक थे और ड्रॉ के बाद सेतु के 12 मैचों में 23 अंक हो गए, तो कह सकते हैं बैक टू बैक वापस डिफेंडिंग चैंपियन बन गया ईस्ट बंगाल इस बार।
ये अच्छी बात है, महिला फुटबॉल का जो स्तर है वो उठ ही रहा है भारत में, यंग प्लेयर्स आर डूइंग वेल और महिला टीम का रैंकिंग भी विश्व स्तर पर बेहतर है देन द मेंस टीम, लेकिन ऐसे टूर्नामेंट शायद और लंबा करना चाहिए, मैचेस ज्यादा देने चाहिए इन लड़कियों को, तब जाके शायद भारत का स्तर और बेहतर होगा।
जी बिल्कुल, और अब रुख करते हैं गुजरात का, जहां गुजरात के गांधीनगर में आज भव्य उद्घाटन समारोह के साथ एशियाई कुश्ती प्रतियोगिता का औपचारिक शुभारंभ हुआ। हालांकि कल से स्पर्धाएं शुरू हो गई थी, जहां कोमल कोहर ने 48 किलोग्राम वर्ग में कांस्य पदक जीतकर भारत के लिए पहला पदक अपने नाम किया था। तो भारत खेल में प्रदर्शन के तो नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है, मेजबानी के भी कुछ नए कीर्तिमान उसकी झोली में आ रहे हैं। गुजरात में कुछ भी बड़ा होता है तो नजर जाती है 2030 में होने वाले कॉमनवेल्थ गेम्स के लिए।
नहीं, कई सारे विश्व चैंपियनशिप्स होने हैं, कई सारे एशियाई स्तर पे कंपटीशन होने हैं, पिछले साल एशियन तैराकी कंपटीशन हुआ था, तो बहुत कुछ होने जा रहा है भारत में, और अच्छी बात है कि हम मेजबानी तो बहुत बेहतरीन तरीके से करते हैं। मुझे 2010 वाला कॉमनवेल्थ गेम्स भी याद है, कई लोगों को शिकायत है लेकिन वी डिड अ ग्रेट जॉब। जब मन में ठान लेते हैं कि कुछ करना है एंड स्पेशली व्हेन इट कम्स टू होस्टिंग इंटरनेशनल इवेंट, हम बहुत अच्छे तरीके से करते हैं, यही देखने को मिल रहा है एशियन वेटलिफ्टिंग में भी। और लेकिन इन रिजल्ट से शायद हम बहुत ज्यादा प्रभावित ना हो, क्योंकि एशियन गेम्स इस साल शायद हमारे लिए बहुत बड़ा कंपटीशन होगा, लेकिन एनी मेडल इन एशियन चैंपियनशिप इज अ वेलकम मेडल।
जी बिल्कुल, वेलकम मेडल होना चाहिए, और खासकर उस खिलाड़ी के लिए जो मीराबाई चानू जैसी खिलाड़ी को रिप्लेस करके इस प्रतियोगिता में आया है, और क्योंकि नजरें ओलंपिक और कॉमनवेल्थ की मेजबानी पर है तो उम्मीद यह भी होती है जब आप मेजबानी करें तो आपके खिलाड़ियों का प्रदर्शन सबसे बेहतर आए, और जिस तरह 2010 में हुआ था कि हम लोगों ने सबसे बेहतर प्रदर्शन दिया था तब तक का, उम्मीद होगी 2030 में भी ऐसा देखने को मिलेगा। अहमदाबाद में 2030 में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों से पहले आज भारतीय खेल प्राधिकरण साई ने माई इंडिया के साथ मिलकर देश में 3 जागरूकता अभियान शुरू किए हैं, जिनका मकसद देश में खेल भावना, रचनात्मकता और युवाओं की भागीदारी को बढ़ावा देना है।
इस अभियान के अंतर्गत प्रतिभागी कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 टॉर्च डिजाइन प्रतियोगिता, CWG रील चैलेंज और कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 क्विज में हिस्सा ले सकते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स 2030 टॉर्च डिजाइन प्रतियोगिता में नागरिकों को एक ऐसी टॉर्च का डिजाइन बनाना होगा जो भारत की संस्कृति, विरासत, इनोवेशन, स्थिरता और खेल में उत्कृष्टता से प्रेरित हो। यह प्रतियोगिता 11 मई से 20 मई तक ऑनलाइन चलेगी। प्रत्येक प्रतिभागी सिर्फ एक डिजाइन जमा कर सकता है। CWG रील चैलेंज में प्रतिभागी को भारत की उभरती खेल संस्कृति, स्थानीय खेल ढांचे, फिटनेस और CWG 2030 की मेजबानी को लेकर रील बनानी होगी। यह चैलेंज 7 मई से 16 मई तक चलेगा। प्रत्येक प्रतिभागी सिर्फ एक ही रील जमा कर सकता है। राष्ट्रमंडल खेल 2030 प्रश्नोत्तरी में 10 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे जिन्हें 5 मिनट के भीतर पूरा करना होगा। यह प्रश्नोत्तरी 9 मई 2026 से 26 सितंबर 2026 तक खुला रहेगा और प्रत्येक सप्ताह शीर्ष 5 विजेताओं की घोषणा की जाएगी। करिश्मा राय, स्पोर्ट्स कैन।
तो ये कॉमनवेल्थ का आयोजन सिर्फ खिलाड़ियों के लिए और आयोजकों के लिए नहीं, नागरिकों के लिए भी काफी कुछ लेकर के आ रहा है, और उम्मीद होगी कि बढ़ चढ़ के लोग प्रतिभाग करते हुए नजर आएंगे अपने अपने हिस्से का।
शक्ति, ये खेल सिर्फ खिलाड़ी के लिए नहीं है, आई थिंक ये खेल भारत का जो बढ़ावा हो रहा है, जो बेहतरी हो रही है, इसको दिखाने के लिए है, और हम सबको इसमें भाग लेना चाहिए। वी शुड ऑल टेक पार्ट इन द सेलिब्रेशन ऑफ कॉमनवेल्थ गेम्स।
जी बिल्कुल, चूंकि गेम सिर्फ वही नहीं जो मैदान पे खेला जाए, बात उस स्पिरिट की भी है, उस माहौल की भी है और उस जोश की भी है जो लोगों में नजर आए। जाएगा। और चलते चलते बात कर लेते हैं गोंडा में चल रही सीनियर ओपन रैंकिंग टूर्नामेंट 2026 में पुरुषों की ग्रीको रोमन स्पर्धाओं का समापन हो गया है। भारतीय कुश्ती महासंघ WFI द्वारा आयोजित प्रतियोगिता में ग्रीको रोमन पदक विजेताओं की घोषणाओं के बाद अब महिला वर्ग की स्पर्धाएं होंगी। तो रैंकिंग सुधारने का मौका जो है गोंडा में इस समय भारतीय पहलवानों के सामने है। और श्रोताओं समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी। राजा रमन आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
थैंक यू।
श्रोताओं इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।